हरे कृष्णा, दिस लेक्चर ऑन भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक नंबर 12 गिवन इन एम्स हॉस्पिटल न्यू दिल्ली ऑन 19 जुलाई 2016 बाय मायसेल्फ प्रशांत मुकुंद दास।
अत्वेवहं जातु नासम् ना त्वं नेम जनाधिपा ना चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम।
अब हम अनुवाद पढ़ेंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ। बोलिए साथ में, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ, या तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, और ऐसा ना और ना ऐसा है कि भविष्य में मैं हम लोग नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आज अपना दूसरा श्लोक बोल रहे हैं। पिछली बार उन्होंने पहला श्लोक बोला, श्री भगवान उवाच, उन्होंने बोला कि तुम पंडितों जैसी बातें करते हो पर पंडितों जैसा व्यवहार नहीं करते हो। लेकिन आज वो बोल रहे हैं कि अगर सच में तुम पंडित बनना चाहते हो, व्यर्थ की बातों पर शोक नहीं कर रहे हो, तो इस चीज को समझो कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं, है ना, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो। क्योंकि अर्जुन बहुत ही ज्यादा चिंतित थे कि मैं बाण चलाऊं कि नहीं चलाऊं, मेरे परिवार के लोगों को मैं कैसे अपने हाथों से उनकी हत्या कर दूं। तो ज्ञानी होने के नाते उनको बहुत डर लग रहा था, लेकिन वो पूर्ण ज्ञानी नहीं थे, आत्मज्ञानी नहीं थे, इसीलिए वो इस प्रकार का एक्टिंग कर रहे थे हमें समझाने के लिए। वो तो आत्मज्ञानी थे, लेकिन हमें समझाने के लिए वो यहाँ पर ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि वो बड़े ही इल्यूजन में हैं, भ्रम में हैं कि मैं बाण चलाऊं या ना चलाऊं। तो इस तरह से भगवान ने उन्हें कहा, ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुम ना रहे हो, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं। तो ये समझने वाली बात है। इस एक अनुवाद से हमारे बहुत सारे भ्रम साफ हो जाएंगे, एकदम जैसे धुंध हट जाता है, हाँ, और फिर हमें चंद्रमा और सूरज साफ साफ नजर आते हैं, वैसे इसमें भी साफ साफ नजर आएगा। जब आप लोगों को बोलते हैं कि भगवान कृष्ण परम भगवान है, तो लोग जो हैं वो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं जी ऐसा कैसे। हाँ, भगवान कृष्ण एक भगवान है, एक भगवान है मतलब अनेकों भगवानों में से एक है, लेकिन जो आप कह रहे हैं ना जी भगवान परम पुरुषोत्तम है, पूर्ण है, वही एक में भगवान है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि वही एक में भगवान है और कोई भगवान नहीं है, ऐसा नहीं है। तो उनको यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, कुछ लोगों के मन में कई प्रकार के भाव होते हैं। जैसे कुछ प्रकार के लोग हैं जिन्हें कहा जाता है द्वैतवादी, और कुछ लोग होते हैं जिन्हें कहा जाता है अद्वैतवादी। अद्वैतवादी मानते हैं कि हम और भगवान एक ही हैं, अद्वैत, जिनका दो नहीं है, एक ही हैं, हम और भगवान एक ही हैं। इसलिए वो क्या कहते हैं, नर ही नारायण है, है ना, नर नारायण सेवा जयपुर में बड़ी चलती है, टीवी पे भी प्रवचन आते हैं, भागवत कथा भी चलती है, नर सेवा नारायण सेवा। जैसे हॉस्पिटलों में सेवा करने वाले लोग बोलते जी मानव सेवा ही माधव सेवा है, तो ये बोलते हैं कौन लोग, जो अद्वैतवादी होते हैं, और उनके अंत में जीवन का लक्ष्य होता है भगवान में विलीन हो जाना, है ना, कहते हैं मोक्ष की तैयारी कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, और अब अंत में भगवान में विलीन हो जाएंगे। लेकिन यहां इस अनुवाद में भगवान ने साफ साफ कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना हूं या तुम ना रहे हो, है, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो मतलब अगर भगवान है और तुम भी हमेशा हो, इसका मतलब तुम और भगवान अलग अलग हो, वरना ये कहते हाँ ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना हूं और ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुम मुझ में ना हो, ये बोलते भगवान। लेकिन भगवान ने यहां कहा ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना हूं और ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुम ना हो। इसका मतलब एक आत्मा अपना अस्तित्व हमेशा बरकरार रखती है, वो कभी भगवान के अंदर मिलती नहीं है। जो ये बातें चल रही हैं, चाहे वो कोई शांति समारोह वाले हो या कोई क्रियाकर्म योग संस्थान वाले हो, लेकिन ये कर्म कांड की बातें बिल्कुल गलत हैं। सच्चाई अध्यात्म की ये है कि हम और भगवान अलग अलग हैं, हम कभी भगवान के साथ मर्ज नहीं हो सकते हैं। इस पे आचार्यगण हमें उदाहरण देते हैं। पिता ने पुत्र को बनाया, जैसे भगवान ने हमको बनाया। भगवान कहते हैं ना कि माम एव अंश जीव लोके जीव भूत सनातन। इस पूरी पृथ्वी पे जो भी हैं वो सब कौन है, मेरे अंश हैं। तो हम जब भगवान के अंश हैं, इसीलिए हमें क्या कहा जाता है, भगवान का पुत्र पुत्री, और भगवान को क्या कहा जाता है, पिता, परम पिता। तो पिता के पुत्र हैं हम। तो अभी कभी ऐसा हुआ है आपके परिवार में, आपने कहीं देखा हो, गांव में, देहात में, शहर में, टेक्नोलॉजी के जगत में, वर्ल्ड में, कहीं अमेरिका में खबर आई हो, पिता ने पुत्र को पैदा किया, बड़ा किया, उसका पालन किया, और कुछ दिनों बाद जो पुत्र था वो इतना सिद्ध हो गया कि पिता के अंदर ही समा गया। माँ ढूंढ रही पुत्र, पुत्र बेटा कहाँ हो, बेटा कहाँ हो, तो बोल रहे, बहन बताती है, अरे अरे पम्मी मम्मी, भैया तो पापा में विलीन हो गए। सुना ऐसा कभी? तो फिर इसीलिए ये जो बातें हैं, ये इल्यूजन है, भ्रम है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ये अद्वैतवाद जो है ना, कि हम भगवान से अलग अलग हैं, ये जो है कि हम भगवान से अलग नहीं हैं, ये गलत है। फिर एक है द्वैतवादी, वो कहते हैं हम और भगवान जो है अलग अलग हैं। हाँ जी, ये बात तो ठीक है, हम और भगवान अलग अलग हैं। तो फिर वो क्या कहते हैं कि हम और भगवान अलग अलग, बिल्कुल भगवान की सत्ता अलग है और हमारी सत्ता अलग है, लेकिन हम कभी भी भगवान के पास नहीं जा सकते, ना हम कभी भगवान के धाम जा सकते हैं। हमें तो भगवान ने बनाया है इसी योनियों में घूमने के लिए, हम घूमते रहेंगे बार बार, कुत्ता बिल्ली मनुष्य, फिर कुत्ता बिल्ली मनुष्य, फिर पेड़ पौधे मछली कुत्ता बिल्ली मनुष्य, तो हम घूमते रहेंगे। भगवान अलग, हम अलग, ये कुछ लोग मानते हैं। हाँ, इसीलिए कुछ संस्थाएं हैं ऐसी, हम किसी का नाम तो नहीं ले सकते हैं इस जगह पे, लेकिन उस संस्थाएं कहती हैं कि ये भक्ति वक्ति करने से कुछ नहीं होगा, सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, मेरा हाथ उठ रहा है, प्रभु जी ये भी लिखा हुआ है, मैं आपको धक्का दे दूंगा, ये भी लिखा हुआ है, मेरा मन, मेरा फ्रीडम कहीं नहीं है, हम तो तीनों गुणों में बंधे हुए हैं। भगवान अलग, हम अलग, हम कभी भगवान के धाम में ना जा सकते हैं ना आ सकते हैं, जैसे मालिक और नौकर, नौकर कभी मालिक के घर में नहीं आ सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। नौकर अगर मालिक की इच्छा अनुरूप कार्य करे तो मालिक नौकर को अपने घर में बुलाता है। ये बात जो है द्वैतवादी नहीं जानते हैं, इसलिए अद्वैतवाद और द्वैतवाद ये दोनों ही भ्रम है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने आकर इस बात को जस्टिफाई किया, क्लैरिफाई किया, साफ सुथरे ढंग से बताया, और उन्होंने एक नया तत्व दिया जिसका नाम है अचिंत्य भेद अभेद तत्व। क्या बोला? अचिंत्य, बोलिए अचिंत्य भेद अभेद तत्व। ये अलग है ना, अद्वैतवाद है ना द्वैतवाद है। कुछ लोग पूछते हैं, आप लोग द्वैतवादी संस्था से हैं या अद्वैतवादी संस्था से हैं? हम कहते हैं हम दोनों से नहीं है। हम लोग किससे हैं? अचिंत्य भेद अभेद तत्वम। इसका मतलब है, अचिंत्य का मतलब है जो सोचने से परे है, जिसे व्यक्ति सोच नहीं सकता वो क्या कहलाता है? अचिंत्य, चिंता से परे, चिंतन से परे, अचिंत्य। और भेद अभेद क्या है? हाँ, ये बात सही है कि भगवान है और हम हैं और हम अलग अलग हैं, लेकिन ना हम भगवान जैसे हैं कि उनमें मिल जाएं। कुछ लोग उदाहरण देते हैं, हम तो जी समुद्र की एक बूंद हैं और ये बूंद मरने के बाद वापस समुद्र में मिल जाती है, पता ही नहीं चलता मनमोहन प्रभु कौन से हैं, योगेश प्रभु कौन से हैं, दोनों समुद्र की बूंद में मिल गए। ऐसा नहीं होता है। आपकी आत्मा सदा अपना एक अस्तित्व बनाए रखती है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी ऑलवेज एग्जिस्ट, हमेशा रहती है। तो इसीलिए उसको कहते हैं कि हम और भगवान एक जैसे हैं। किस में? क्वालिटी में, गुणों में हम भगवान जैसे हैं। भगवान का स्वरूप है सच्चित आनंद विग्रह, और हमारी भी आत्मा का स्वरूप है सच्चित आनंद विग्रह। तो हम क्वालिटी में, गुणों में भगवान जैसे हैं, लेकिन भगवान कैसे हैं? बहुत विशाल हैं, विभू हैं, और हम बहुत छोटे से हैं, अणु हैं। जैसे सोने की खान और सोने का एक अंगूठी। अब अंगूठी को देखकर कोई ये नहीं कह सकता, अरे अरे आपके हाथ में जो है ना, ये सोने के खान के हिस्से की अंगूठी है। ऐसे बोलता है कोई? क्या कहते हैं? अच्छा सोने की अंगूठी है, लेकिन वो सोने की खान नहीं है। इसी तरह हम भी आत्मा हैं, परमात्मा नहीं है। हम भी प्रभु जी हैं, लेकिन भगवान नहीं है। ये चीज को समझने के लिए उन्होंने दिया अचिंत्य, भेद अभेद, भेद भी है और अभेद भी है। तो हम भगवान जैसे हैं गुणों में, सच्चित आनंद विग्रह भगवान के जैसे हैं, लेकिन भगवान विशाल हैं और हम उनके छोटे से अणु अंश हैं। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। और शरीर त्यागने के बाद, इस भौतिक पंच तत्व के शरीर को त्यागने के बाद, ये आत्मा जब वापस भगवान के घर जाती है तो भगवान में विलीन नहीं हो जाती है, अलग से एक आइडेंटिटी बनी रहती है और भगवान के सेवक बनकर हम अपना जीवन चलाते हैं। तो जो लोग भगवान की सेवा में रुचि देते हैं, इसीलिए उनको भगवान अपने धाम लेके जाते हैं। जो सेवा में रुचि नहीं दिखाएंगे, उनको भगवान कभी अपने धाम में लेके नहीं जाएंगे। वो अपनी यही फिलॉसफी झाड़ते रहेंगे, हम मिल जाएंगे जी, ये तो घट आकाश है, एक मटका है, मटके के अंदर हवा है, मटका फूट गया, हवा हवा में मिल गई। ऐसा नहीं होता। वो हवा जो उस मटके के अंदर है, वो अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी बना के रखेगी हमेशा से। ऐसा नहीं हो सकता। कठोपनिषद के अंदर श्रील प्रभुपाद जी यहाँ बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। वो कह रहे हैं, नित्यो नित्यानाम चेतनस्ता चेतनानाम एको बहुनान यो विद्धाति कामान ताम आत्मस्थ ये न पुषन्ति धीरस्तेषाम शांति शाश्वती नेतरेषाम। तो ये कठोपनिषद से लिया गया श्लोक है। इसमें बोला गया नित्यो नित्यानाम, क्या क्या चीजें नित्यो नित्यानाम है? तो उन्होंने कहा चेतनस चेतनानाम, तो हमारे शरीर की जो चेतना है ये किस चीज से बनी हुई है? आत्मा से। तो इसमें यहां दो चीजें बोली गई, एको आप देख सकते हैं गीता के अंदर, आप इसी अनुवाद में 12वें श्लोक के नीचे लिखा है, एको बहुनो यो विदधाति कामान। एको मतलब भगवान एक है, सच्चित आनंद विग्रह कहते हैं ना, ईश्वरम परम कृष्णा सचितानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदम सर्व कारण कारणम। सारे कारणों के कारण गोविंद है, वो एक है, एको। और नीचे क्या है उसके बाद? बहुना। बहुना का मतलब है कि हम उनके अंश हैं, लेकिन हम बहुना बहुत सारे अंश हैं। अनलिमिटेड सोल्स घूम रही है संसार में, अनलिमिटेड असंख्य बहुना, लेकिन है कैसी? ना आत्मा कभी मरती है, ना परमात्मा कभी मरता है। मरता कौन है? शरीर। हाँ, शरीर मरता है। इसलिए उन्होंने कहा कि विद धाति कामान, जो हमारी इच्छाएं हैं वो मरती हैं, हमारे शरीर मिलते हैं, लेकिन हम कौन है? नित्यो नित्यानाम, भगवान भी नित्य रहते हैं और आत्मा भी नित्य रहती है। और फिर आगे कहते हैं, ताम आत्मस्था ये न अपुषंति, जो व्यक्ति अनुपिशंति का मतलब है जो देख पाता है कि मैं कौन हूं, शरीर नहीं हूं आत्मा हूं। जो ये चीज को देख पाता है वो फिर कैसा बन जाता है? आगे लिखा है धीरस तेषाम, कैसा बन जाएगा? धीर। धीर का मतलब है, आचार्यगण बताते हैं, धीर का मतलब है जब उद्विग्न करने वाली परिस्थितियों में कोई उद्विग्न ना हो, मतलब प्रोवोकेशन सिचुएशंस में कोई एजिटेट ना हो। समझ रहे हैं आप? प्रोवोकेशन बहुत ज्यादा आपको उतावला कर देने वाली परिस्थिति में भी आप उतावले ना हो, तब आपको क्या कहा जाता है? धीर कहा जाता है। जैसे शिवजी, दुनिया उनके लिंग की पूजा करती है लेकिन उनके अंदर कोई काम वासना की उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए शिवजी महान है। उनके शिव लिंग की पूजा होती है ना, लेकिन कोई व्यक्ति, कोई पुरुष अगर उसके लिंग की तरफ कोई पूजा करे तो व्यक्ति क्या होगा? वो कामुक हो जाएगा। लेकिन शिवजी इससे परे हैं, इसलिए उनका नाम धीरों में एक धीर आता है, वो अधीर नहीं है, वो धीर है। उनको सिर्फ अगर कोई व्यक्ति उद्विग्न कर सकता है तो वो स्वयं भगवान, क्योंकि जब भगवान मोहिनी अवतार लेके आते हैं तो शिवजी भी मोहित हो जाते हैं। अन्यथा भगवान के अलावा किसी में शक्ति नहीं जो शिवजी को क्या कर सके, उनकी धीरता से अधीरता में ले आए। लेकिन हम कैसे हैं? अगर हम साधु संघ में रहते हैं तो हम धीर रहते हैं, लेकिन साधु संघ को छोड़कर अगर चार दिन फिल्मी कलाकारों के साथ रहें, टीवी देखें, या ऐसे दोस्तों से मिलें जो शराब की बातें कर रहे हैं, या फिर स्त्री की बातें कर रहे हैं, या स्त्री पुरुष के ऐसे संघ में रहे जहां पुरुषों की बातें हो रही हैं, तो अपनी काम वासना को, अपनी इच्छाओं को रोक पाना हमारे लिए मुश्किल है। और जो व्यक्ति ऐसी सिचुएशन में रोक पाता है वो क्या है? धीर है। और धीर वही है, इसमें लिखा है, जो ताम आत्मस्थ अनुपश्यन्ति, जिसने जान लिया है मैं कौन हूं, आत्मा हूं। तो अर्जुन यहां जो एक्टिंग कर रहे हैं उसमें भगवान डांट के उनको कह रहे हैं, हाँ, ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुम ना रहे हो, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं, और ये समस्त राजा ना रहे हो, और ऐसा भी भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तो तुम जिसे मार रहे हो वो क्या है? शरीर है। लेकिन अर्जुन शोक कर रहा है कि मैं कैसे मार दूं, कैसे मार दूं। इसके लिए भगवान उन्हें डांटते हुए कह रहे हैं, गुरु की सिचुएशन जो है ना वो डांटने वाली है, तो उनको डांट कर कह रहे हैं, कहां तुम फंस गए हो इस टप के अंदर, हाँ सच्चाई में आओ। सच्चाई क्या है? कि ना कभी ऐसा हुआ कि ये नहीं थे, और कभी ऐसा नहीं होगा कि तुम ना रहो। तो वहां पर उन्हें डांट रहे हैं। आप सोचिए, अगर हम आत्मा नहीं है और अगर हम शरीर हैं, तो कोई जब हम गाड़ी चलाते हैं, मान लीजिए जैसे हमारे शरीर को चलाने वाली कौन है? आत्मा, ड्राइवर, और ये शरीर है गाड़ी। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी के आगे लाइटें होती हैं, चार टायर होते हैं, एक बॉडी होती है, कलर होता है। अब जैसे मनमोहन प्रभु जी गाड़ी चला रहे हों और आपके मिलने वाले लोग कहें, वाह प्रभु जी क्या लाइटें हैं, प्रभु जी आपका टायर पंचर हो गया, प्रभु जी आपका रंग बड़ा चमक रहा है सफेद, आज आपका रंग चमक, प्रभु जी आपका शीशा टूट गया, और आप जो हैं उसी से अपने को जाने, प्रभु जी आपकी कार का डीजल पूरा कर दिया है, अब उन्होंने खाया है नहीं खाया है, उन्होंने कपड़े पहने हैं नहीं पहने हैं, वो दुखी हैं सुखी हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ कहां ध्यान दे रहे हैं? प्रभु जी की गाड़ी पे। ऐसे ही जो लोग सिर्फ गाड़ी या देह को अपना मानते हैं वो लोग ऐसे ही मूर्ख हैं जो खाली गाड़ी को ही भगवान मतलब इंसान मान रहे हैं, उसके अंदर के व्यक्ति के बारे में जानते नहीं है। लेकिन जो समझदार है वो जानते हैं कि गाड़ी को जब एक्सीडेंट होता है तो कोई ये नहीं कहता, ओए होए कितनी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, बाप रे बाप पूरी तोड़ फोड़ दी, हाँ जल्दी से निकालो आदमी को, निकालो आदमी का क्या हुआ है ना। समझदार व्यक्ति आदमी बारे आदमी को चोट तो नहीं लगी, एम्बुलेंस ले जाओ। अब मूर्ख क्या कहेगा? अरे 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 गाड़ी का इतना हो गया, इसको निकाल के साइड में रखो, गाड़ी को पहले स्टेशन ले जाओ ठीक करवाने के लिए। क्या कहेगा समझदार? कहाँ ले जाओ? ठीक कराने ले जाओ। कहेगा कि नहीं? क्या ठीक कराने ले जाओ, आदमी को कि गाड़ी को? तो आप लोग किसको ठीक कराने ले जाते हैं? गाड़ी को ले जाते हैं। जैसे ही चोट लगती है किसी के मन में, हाँ, तो वो अपने आप को अलग ही नहीं कर पाता कि मैं आत्मा हूं। वो सोचता है, अरे मेरे शरीर को गालियां दे दी, मेरे शरीर को ऐसा बोल दिया, अब मैं छोड़ूंगा नहीं इसको, और अपनी आत्मा का ध्यान ही हट जाता है हमारा। तो इसे रोज 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 इस पे चिंतन मनन करना पड़ेगा, तब हम समझ पाएंगे एक्चुअली कि हम शरीर नहीं है, आत्मा। जैसे कुछ समय पहले एक जगह पर एक नाटक दिखाया गया, तकरीबन कुछ साल पहले। तो नाटक में क्या दिखाया कि एक व्यक्ति था और उसने क्या किया, जंप मार दी पानी में, नदी में। तो दो समझदार वहां खड़े थे, तो एक समझदार कूद गया और बोला, मुझे तैरना आता है, मैं इसे बचा के लाता हूं, और अंदर कूद कर उसका कोट उतार लाया और लाकर गांव में चिल्लाने लगा। गांव वाले इकट्ठे हो गए, ऐसे एक्टिंग कर रहे थे वो ड्रामा के अंदर, चिल्लाने लग गए, अरे देखो देखो आदमी डूब गया, मर गया मर गया। तो वो समझदार बोला, नहीं 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 मरा, मैंने बचा लिया, देखो बचा लिया। तो उन्होंने कहा, अच्छा बचा लिया, बहुत बढ़िया, और अब मैंने उसको सूखने पे भी टांग दिया है, गीला हो गया था ना आदमी, तो मैंने उसे सूखने टांग दिया है। तो उन्होंने देखा, तो देखा आदमी तो है ही नहीं इसके अंदर, तो खाली कोट ही कोट है, आदमी कहां गया, आदमी तो पानी में डूब गया। उन्होंने कहा, अरे तू बेवकूफ है, समझदार नहीं है। अरे क्यों? अरे तू जिसको बचा के लाया है वो इंसान नहीं, वो तो उसके वस्त्र है। ऐसे ही हम भी करते हैं, किसको बचाने में लगे हुए हैं? कोट को। और समझते क्या अपने आप को? बुद्धिजीवी, बड़े समझदार हैं। अरे प्रभु जी एम्स में जाते हैं हम लोग, ऐसे वैसे नहीं है, समझदार हैं हम लोग, लेकिन हम बचाने में किसको लगे हैं? कोर्ट को बचा रहे हैं। आदमी तो डूब गया नीचे। अगर ये व्यक्ति सच में ये चल पाता, ये शरीर अपने आप से, तो ये जब शरीर मर जाता है, कहते हैं मृत हो गया, तो इसमें से आत्मा निकल जाती है। उसके बाद ये शरीर को क्या माना जाता है? मृत माना जाता है। लेकिन कोई फायदा नहीं है, जब तक इस शरीर में वो आत्मा थी हमने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। तो यहां पर कहते हैं कि हमको कृष्ण तब तक दिखाई नहीं देंगे, हम अपने आप को आत्मा तब तक नहीं मान पाएंगे जब तक हम अपनी आंखों से इन चीजों को समझ नहीं पाएंगे। तो आंखों से समझाने के लिए आंखों में प्रेम का अंजन लगा होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा दिखता है, या फिर आप अगर हरे रंग का चश्मा लगाओ तो यहाँ पर बैठे हुए सारे लोगों के कपड़े कैसे दिखेंगे? हरे दिखेंगे। लाल लगाएंगे तो कैसे दिखेंगे? लाल। तो इसका मतलब हमारे नेत्रों के अंदर कुछ ऐसा लगना चाहिए कि हम भगवान को देख पाए। अभी कुछ व्यक्ति पूछ रहे थे, बोले जी आपके मंदिरों में जो मूर्तियां बनती हैं वो किस मटेरियल की बनती हैं? किस मटेरियल की मूर्तियां होती हैं, लोग पूछते हैं, मेरे से पूछ रहे थे अभी, आपके द्वारका मंदिर में किसकी मूर्तियां हैं? मैंने कहा जी वहां पर उसकी पीतल की मूर्तियां हैं। हाँ, पंच धातु की। अच्छा अच्छा अच्छा, हमें लगा मार्बल की मूर्तियां हैं, ऐसी बात कर रहे थे। वो तो चले गए बात करके, लेकिन बाद में मैं सोच रहा था कि जो भक्त होता है वो हर मटेरियल में भगवान को देखता है, हर मटेरियल में, है ना। टेबल में भगवान को देखेगा, खंबे में भगवान को देखेगा, लोगों में भगवान को देखेगा। जैसे प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, मोह में तो में खड़क में खंभ में जित देखो उत राम है राम। हर जगह भगवान को देखता है। हाँ, एक भक्त है जो हर जगह भगवान को देखता है, और भगवान भी खंबे से भक्त के लिए प्रकट होते हैं। लेकिन एक अभक्त कैसा है, भगवान में भी क्या ढूंढ रहा है? मटेरियल ढूंढ रहा है। एक मटेरियल में भगवान को ढूंढता है, एक भगवान में मटेरियल को ढूंढता है। ये सिंपल एनालिसिस है, आप समझ सकते हैं आप अभी किस लेवल पे हैं, भक्ति में है या अभक्ति में है। जो भक्त होगा वो कभी भी भगवान के मटेरियल को नहीं देखेगा। अरे गोबर का बना हो, मिट्टी का हो, लेकिन है कौन? भगवान है। भगवान अपने आप को आठ प्रकार के धातुओं में अपना विस्तार करते हैं। तो हमको आंखों में इस प्रकार का काजल लगाना है जिससे हम क्या कर सकें, भगवान का दर्शन कर सकें। हमें ये पत्थर की मूर्ति पत्थर ना नजर आए, हमको भक्तों के अंदर ये ना नजर आए अरे ये तो हमारे जैसे दो हाथ पैरों वाले इंसान है, इनमें ऐसा क्या खास है कि हम इनको प्रभु जी कहें। हैं वही लोग बोलते हैं, इस्कॉन वालों ने ये क्या नया सिस्टम बनाया, प्रभु जी प्रभु जी। अरे ये व्यक्ति कैसे प्रभु जी हो गया? प्रभु जी तो वो हैं जो ऊपर हैं। तो उनको आप वो बता सकते हैं जो हमने अभी पहले बताया कि वो खान है और ये उनके टुकड़े हैं, सोने की खान के एक टुकड़े हैं। तो सोने की खान को भी सोना कहते हैं, इसलिए प्रभु जी को भी, प्रभु जी के अंश को भी प्रभु जी कहते हैं। लेकिन आंखों में प्रेम का अंजन अगर लगा हो तो हम भगवान को अच्छे से देख पाएंगे। ब्रह्म संहिता में कहा है, प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचनेना संतम सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर अचिंतय गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचनेना, अगर मैं भक्ति रूपी भगवान को देखना चाहता हूँ तो उसके लिए मेरी आंखों में किसका अंजन होना चाहिए? प्रेम का अंजन। प्रेम अंजन छुरिता भक्ति विलोचनेना संतम सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। और इसीलिए संत जो हैं वो अपने हृदय में सदा क्या करते हैं? भगवान का दर्शन करते हैं। यम श्याम सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूपम, जिनका गुण और स्वरूप अचिंत है, ऐसे श्याम सुंदर को अपने हृदय में कौन देख पाते हैं? जो भक्त हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि, और वो समझते हैं कि गोविंद ही कौन है? आदि पुरुष हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश वाला सिस्टम हो गया, देवी देवताओं वाला सिस्टम हो गया, गुरुजी वाला सिस्टम हो गया, सब गलत है। सिर्फ एक ही सिस्टम है, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको भवनान यो विद्येति कामान। बस एक ही भगवान है और कुछ नहीं है। पूर्ण विदम, भगवान है बस पूर्ण और कोई नहीं। हम सब अपूर्ण इंद्रियों के बने हुए अपूर्ण हैं, ऐसा समझ जाएंगे वो जिनकी आंखों में क्या है? प्रेम का अंजन। और जब प्रेम का अंजन होगा ना तो मूर्तियां बात करती नजर आएंगी, पत्थर नहीं रहेगा। जब मंदिरों को बनाया जाता है, जैसे इस्कॉन का जब बॉम्बे का मंदिर बन रहा था 1975 में, तो उस समय वहां पर एक व्यक्ति थे मिस्टर नायर, उन्होंने जमीन के साथ बड़ा झोलझाल किया। जब आप प्रभुपाद जी की लीलामृत पढ़ेंगे तो इस लीला को पूर्ण रूप से पढ़ सकते हैं, अभी नहीं लेंगे इसको, बस इसको समझाना चाहते हैं उदाहरण रूप में। मिस्टर नायर ने ऐसे ऐसे टैक्टिक्स खेले, लाखों रुपए का जुर्माना लगाना और बाद में जमीन का पेपर्स ना देना, और प्रभुपाद जी के भक्त, विदेशी भक्त बेचारे परेशान थे कि कैसे ये मंदिर हमें मिलेगा। और उन्होंने राधा रास बिहारी की मूर्तियां भी स्थापित कर दी थी, और कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो भगवान की मूर्तियों को तोड़ना चाहते थे। भगवान की मूर्तियों को तोड़ने के लिए उन्होंने ऑर्डर भी पास कर दिए और कहा इस मंदिर को रातों रात तोड़ दो। तो वहां पर मिस्टर एक थे, उन्होंने बहुत अच्छी सेवा करी प्रभुपाद जी की, उनकी जान पहचान थी मिस्टर बाल ठाकरे के साथ उस समय। तो उन्होंने मिस्टर बाल ठाकरे को कहा कि देखिए हिंदू मंदिर टूट रहा है, आज भगवान इस हिंदुस्तान में अगर टूटने लगेंगे तो फिर ये हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं रहेगा, ये नास्तिक स्थान बन जाएगा, नास्तिकों का स्थान। अगर ये हिंदुस्तान रहना चाहते हैं तो इसके अंदर भगवान तो रहने चाहिए ना। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कमिश्नर को फोन किया और कहा अगर अपनी गद्दी चाहते हो तो भगवान का विग्रह नहीं टूटना चाहिए वरना मैं तुम्हें तोड़ दूंगा। ऐसा कहा उन्होंने, चाहे उन्होंने वोट बैंक के लिए कहा हो या जैसे भी कहा हो, पर उन्होंने मदद करी प्रभुपाद जी की और राधा रास बिहारी ने अपने को सुरक्षित अपने आप प्रदान करी। तो मतलब कुछ भी नहीं बचा था मंदिर का, सब तोड़ दी थी बिल्डिंग, खाली जहां भगवान खड़े हैं बस वही खड़े थे और सब टूट गया था। बुलडोजर वहीं आके रुक गया जहां भगवान खड़े थे, इतनी शक्ति है भगवान ने, भगवान टूटे नहीं। तो देखिए लोग जो हैं वो भगवान को तोड़ना चाहते होंगे, उनको लगता है ये क्या है, पत्थर है और जो ये भक्ति करते हैं ये ढोंग है, लेकिन सच्चाई क्या है, ये भगवान है। लेकिन किसको दिखेंगे, जिसकी आंखों में प्रेम का अंजन होगा। एक बार राजा अकबर ने बीरबल से बोला, बीरबल तुम जानते हो मेरा पुत्र कितना सुंदर है, देखो देखो, बुलाया राजकुमार इधर आओ, गोदी में बिठाया, कहा देखो कितना सुंदर है। तो बीरबल बोला जी महाराज सुंदर तो है लेकिन सबसे सुंदर नहीं है। होने का मतलब सबसे सुंदर नहीं है, तुम्हारा कहना क्या चाहते हो, पृथ्वी पे इस पूरी पृथ्वी के अंदर क्या राजा बीर अकबर के पुत्र से ज्यादा सुंदर कोई है। कहा हाँ ठीक है बीरबल मुझे दिखाओ, अगर तुमने नहीं दिखाया तो मैं तुम्हारी गर्दन कलम कर दूंगा। बीरबल बोला इसका उत्तर थोड़े दिनों में दूंगा, एक हफ्ते का समय चाहिए। ठीक है एक हफ्ते का समय ले लो। तो बीरबल घूमते रहे और फिर एक हफ्ते बाद घूम कर आए, बोले राजा अकबर मैंने ढूंढ लिया है, आपके पुत्र से ज्यादा सुंदर एक व्यक्ति है। कहा चलो दिखाओ। तो अपने साथ चार पांच गार्ड को कुछ विद्वान लोगों को लेके गए और कहा कंपैरिजन करके बताना जिसे ये दिखा रहे हैं उसमें और मेरे पुत्र में कौन ज्यादा सुंदर है। तो जब लेके गए तो देखा एक गली कूचे में लेके जा रहे अकबर बीरबल को, बीरबल अकबर को, और चलते जा रहे हैं कीचड़ भरा हुआ है और एक झोपड़ी के पास पहुंच गए और वहां भीलों की बस्ती थी, वहां पर एक भील स्त्री थी और उसका एक बच्चा जिसका रूप बहुत ही कुरूप था, काला सा बच्चा, और उसका उसने कपड़े भी नहीं पहने हुए हैं और उसके बाल बड़े हुए हैं और नाक निकल रही है और उसमें मतलब पूरा एकदम मिट्टी में लगा हुआ है बच्चा, गंदा सा, और वहां ले जा रहे हैं। और राजा अकबर को बीरबल ने कहा ये देखिए ये आपके पुत्र से ज्यादा सुंदर है। उन्होंने कहा शर्म नहीं आती है तुमको, एक राजकुमार का कंपैरिजन ये भील जाति के छोटे से कुरूप बच्चे से करते हो। कहा आप पास जाके सुनिए तब आपको पता चलेगा। जब पास गए तो वो माँ जो थी वो बच्चे को हाथ में लेके क्या बोल रही थी, ओ मेरा लाज दुलाला सबसे सुंदर राजकुमार, तू तो सबसे सुंदर पृथ्वी का सबसे सुंदर बच्चा है। क्यों कह रही थी ऐसा, क्यों कह रही थी, आंखों में प्रेम का अंजन था कि ये मेरा पुत्र है। जिसकी आंखों में ये अंजन है कि ये भगवान की मूर्ति है और जो मेरे घर में है वो मेरा है और ये पराया है, उसी को दिक्कत होती है, वही तोड़ता है, वही प्रणाम नहीं करता। लेकिन जिसकी आंखों में प्रेम का अंजन है कि ये ठाकुर मेरे हैं मैं इनका हूं, वो तो फिर हर जगह दंडवत करता है। उसके लिए कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है ना, वो पूछेगा कि ये ठाकुर जी किस मटेरियल के बने हुए हैं, वो तो ठाकुर रूप देखते ही प्रणाम कर देगा। एक व्यक्ति थे वो एक बार नाटक देखने गए और उनको पता नहीं चला कि उनकी पत्नी ने भगवान के नाटक में राधा रानी का रोल किया है, उन्हें पता नहीं था। उनकी पत्नी ने कहा मैं सरप्राइज दूंगी, नई शादी हुई थी और देखने बैठ गए नाटक। नाटक देखा तो उनकी पत्नी, जब ड्रामा खुला रासलीला हो रही थी जन्माष्टमी के समय, तो उनकी पत्नी राधा रानी बन के दौड़ती हुई आई। तो वो देखते रहे रोते रहे। बाद में उनकी पत्नी ने पूछा आपको कैसा लगा, तो उन्होंने पैरों में दंडवत करके कहा बहुत सुंदर। तो उन्होंने कहा आप ये क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं आज से तुम्हारा मेरा संबंध समाप्त हुआ। क्या हो गया ऐसा, मैंने आपको नहीं बताया इसलिए नाराज है। कह रहे नहीं नहीं ये बात नहीं है, आज मैंने तुम्हारे अंदर अपने भगवान का स्वरूप देख लिया है राधा रानी का, अब मैं तुम्हें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर सकता हूं। तो उन्होंने पूरा जीवन अपनी पत्नी को कभी छुआ नहीं। तो आप सोचिए ये किसी भी रूप में भगवान का दर्शन कर पाना ये भक्त के अंदर है ना, बाकी लोगों के अंदर नहीं है। अभी हम लोग हर साल ड्रामा करते हैं, तो एक बार मैं ड्रामा कर रहा था तो मेरे को कृष्ण का रोल दिया गया तो भक्त रोने लग गए बाद में, दंडवत करने लग गए, पैर छूने लग गए, कोई अगरबत्ती करने लगा। मैंने कहा अरे मैं भगवान नहीं हूँ, तो कह रहे नहीं आप भगवान नहीं है लेकिन ये स्वरूप भगवान का है। तो इसी तरह से है, जो व्यक्ति के प्रेम का अंजन होगा उसको भगवान से प्रेम उत्पन्न होगा। लेकिन अर्जुन जो है वो शरीर रूपों में फंस गए, वो ना आत्मा को समझ रहे हैं ना गोविंद जो उनके साथ खड़े हैं उनको समझ रहे हैं। तो इसलिए समझदारी ये है कि हम भगवान को जल्दी से जल्दी समझें और हम ये समझें कि हम भगवान के अंश हैं। एक छोटी सी चीज आपको और बताना चाहते हैं, आज जैसे गुरु पूर्णिमा का अवसर है तो गुरु पूर्णिमा के अवसर पे एक व्यक्ति को कैसे गुरु के शरण में जाना चाहिए। जैसे भगवान कृष्ण की शरण में अर्जुन गए और उन्होंने भगवान कृष्ण को अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, तो इसी तरह से हमें भी एक ऐसे गुरु को ढूंढना चाहिए जिसकी शरण में हम जा सकें, है ना। हमारे अंदर कोई ऐसी भावना नहीं आए कि अरे अरे गुरुजी तो उसी हड्डी के बने हुए हैं, उसी मांस के बने हुए हैं, फिर गुरुजी की शरण में हम क्यों जाएं। ऐसा अगर किसी के मन में भावना आती है इसका मतलब वो सही मायने में अभी गुरु की शरण में जाने योग्य नहीं है। गुरु जो है आपके जीवन में बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमिते कोन भाग्यवान जीवा, गुरु कृष्ण कृपा पाया भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड भ्रमिता कौन भाग्यवान जीवा, इस पूरे ब्रह्मांड में घूमने के बाद ऐसा कौन होगा जिसके जीवन में गुरु और कृष्ण मिल जाएं और उसके बाद वो उनको इग्नोर करे। जो इग्नोर करे उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। अरे आज लोगों को जरूरत है कि कोई हमें गाइड करे लेकिन उन्हें गाइड करने वाला कोई नहीं है, और फिर अपने जीवन के विगत 20-25 साल निकलने के बाद जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो क्या कहते हैं, काश किसी ने हमें गाइड किया होता। और जो उनके बच्चे हैं अगर उनको कोई गाइड मिल जाए ना तो क्या कहते हैं, नहीं 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 गुरुजी की बात मत सुनो। अरे तुम रो रहे हो कि मुझे अपनी जवानी में कोई गाइड नहीं मिला, आज तुम्हारे बच्चे को मिल गया है तो फिर उसको सुनने दो, आध्यात्मिक प्रगति करने दो, लेकिन लोग करने नहीं देते हैं। तो गुरु कैसे होने चाहिए तो इसके बारे में भी हमें पता रहना चाहिए। कई लोग कोई भी गुरु बना लेते हैं, जो भी भगवान के बारे में बोले वो गुरुजी, और अगर कोई गुरुजी धोखा दे दें तो फिर बाद में लोग बोलते हैं हमारे गुरुजी ने हमको धोखा दे दिया, अब कैसे हम विश्वास करें, दूध का छला जी छाछ को फूक फूक के पीता है, हम कैसे इस कौन वालों पे भरोसा कर लें। तो इसलिए उनको कहा जाता है कि बाजार में 500 रुपए का नोट नकली भी है और 500 का असली भी है, लेकिन जो समझदार होता है वो आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार 500 रुपए के नकली नोट से असली नोट को अलग कर पाता है। तो आपके पास भी शास्त्रों की गाइडलाइंस हैं जिनसे आप पता कर सकते हैं कि सच्चा साधु कौन है, सच्चा भक्त कौन है, नकली साधु कौन है। वैसे देखा जाए तो गुरु शब्द अपने आप में पूर्ण है, गुरु का मतलब होता हैवी, लेकिन प्रभुपाद जी ने गुरु शब्द के साथ एक और शब्द लगाया बोनाफाइड गुरु, गुरु के साथ लगाया प्रमाणिक गुरु। क्यों लगाया, प्रभुपाद जी ने कहा देखो गुरु का हमेशा प्रमाणिक ही होता है, लेकिन क्योंकि आजकल कलयुग में गुरु कोई भी बन जाता है इसलिए उसके आगे लगाना पड़ता है प्रमाणिक गुरु, बोनाफाइड गुरु। तो चार संप्रदाय हैं, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय। इन संप्रदाय में आने वाला कोई व्यक्ति जिसके अंदर ये गुण हो, खाली संप्रदाय में ना हो, संप्रदाय के साथ जिसमें ये गुण भी हो, जिन गुणों की चर्चा हम करने वाले हैं, वो व्यक्ति गुरु बनने योग्य होता है, गुरु बनाने योग्य होता है। कैसा होता है तो कहते हैं तितिक्ष्वा कारुणिका सुहृदम सर्वभूता नाम अजात शत्रुवा शांता साधवा साधु भूषणम। छह गुण बताए गए हैं शास्त्रों में, भागवतम में। पहला क्या है, तितिक्ष्वा कैसा होना चाहिए, वो व्यक्ति अंदर से कैसा होना चाहिए जिसके अंदर उद्विग्नता ना हो, धीर हो, जिसकी चर्चा हमने पहले भी करी, वो ऐसा हो जो कि परिस्थितियां विपरीत आने पर क्या हो, धीर रहे, है ना। इंटरनल टॉलरेंस जिसमें हो वो है तितिक्ष्वा। इंटरनल टॉलरेंस मतलब अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सके। हर एक व्यक्ति का मन करता है बहुत दिन हो गए इस कौन में बोर होते होते, चाट खाए हुए इतना समय हो गया, हमेशा भोग लगाओ भोग लगाओ भोग लगाओ, एक बार खा लेंगे तो कौन सा जहर खा लेंगे, ले आ बेटा पानी बताशे। हाँ चल बेटा टीवी लगा ले, बहुत दिन हो गए पिक्चर देखे हुए, सुना है एक नई पिक्चर है ये सुल्तान, चल देखते हैं। तो ये इसका मतलब है वो अपनी इंद्रियों को अभी कंट्रोल नहीं कर पाए, इंटरनल टॉलरेंस तितिक्ष्वा। और एक्सटर्नल टॉलरेंस, जब कोई आपसे बुरा बर्ताव करे तो आप अपनी आत्मा को और शरीर को अलग अलग कर सके। ये समझें, ये तो मेरी गाड़ी की बुराई कर रहा है। जब मैं इस कॉन में नहीं था तो मेरी गाड़ी को पीछे से कोई हॉर्न बजाता था तो मैं उस आदमी को रास्ता नहीं देता था, आजा बेटा अब आजा बताता हूँ तुझे, है ना। लेकिन इस कॉन में आए, पढ़ने लगे, शास्त्र पढ़े, भक्तिमय लोगों से जुड़े, तब आज समझ में आता है कोई हॉर्न बजाता है ना तो कहते हैं आप चले जाओ, जिसे जल्दी थी वो चले गए जिन्हें जल्दी थी वो चला जाता है बेचारा, और गालियां भी देके जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ठीक है बेचारा अपनी जुबान गंदी कर रहा है, इसको बहुत जल्दी थी, इसलिए इतनी हॉर्न पे हॉर्न बजाते रहते हैं। फिर आगे जाके उनको वो स्पीड वाली गाड़ियां रोक लेती हैं, फिर बेचारे हमें गालियां देते रहते हैं, तो अपने मुंह को खराब करते हैं। एक दिन एक व्यक्ति गाली दे रहा था रोड पे, तो मैंने उससे सिर्फ इतना पूछा शीशा खोल के, हरे कृष्णा। कहते क्या हरे कृष्णा, क्या हरे कृष्णा, इतनी देर से दिखा रहा हूँ सुनाई नहीं देता तुमको। मैंने कहा आपने ब्रश नहीं किया क्या आज, तो कह रहा है एकदम चुप हो गया, क्यों। मैंने कहा आपकी जुबान इतनी गंदी है तो मुझे लगा शायद ब्रश नहीं किया होगा आप, तो अपनी जुबान को गंदा कर रहे हैं, बोल रहे हैं कुछ भी। अरे गाड़ी चल रही है, रास्ता मिलेगा तो हट जाएंगे, एक बार हॉर्न दे दिया ठीक, पी 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 पी, ये इंटरनल टॉलरेंस नहीं, तितिक्ष्वा नहीं है, अंदर अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, एक्सटर्नली अगर कोई गाली देता तो लड़ने लग जाते हैं। तो ये क्या है, तितिक्ष्वा, जिसमें हो वो व्यक्ति सही मायने में बहता है। और फिर आगे है कारुणिका, करुणामयी हो। तो करुणामयी कैसे होते हैं, लोगों को पूड़ी सब्जी खिलाते हैं, रिक्शे वालों को रोक रोक के रस्ते पे जाम लगा देते हैं, तो वो करुणा नहीं है। करुणा वो है जो सही मायने में आत्मा के स्तर पर लोगों की हेल्प करे। आपका शरीर तो यहीं रह जाने वाला है, चाहे इसमें पूड़ी खाएं चाहे इसमें आलू डालें। लोग बोलते हैं अरे वो बड़े धर्मात्मा है, पूड़ी सब्जी खिलाते हर शनिवार को, वो तो अपना शनि उतार रहा होता है, उसको पूरी सब्जी से आपके पेट से क्या मतलब। शनि महाराज को बोला है मेरा शनि हट जाए, मेरे घर बिजनेस आ जाए, चल 10 लोगों को पूरी सब्जी खिलाऊंगा, तो वो दान या करुणा नहीं है। करुणा तो वो है जो बिना किसी लालच के की जाए। हम यहाँ आते हैं, आप लोगों से कभी बोलते हैं कि नहीं नहीं आप लोग जब तक मुझे लाकर मिठाई के डब्बे नहीं दोगे आपको कुछ ज्ञान नहीं देंगे, ऐसा बोलते हैं। हर एक व्यक्ति को हजार हजार रुपए देने पड़ेंगे, फीस लगेगी हमारी हर क्लास की, लगा दें ऐसी फीस, कोई नहीं आएगा आप में से। तो करुणा जो है वही है जब व्यक्ति बिना किसी लालच के लोगों को प्रचार करे, लोगों की आत्मा के स्तर को ऊंचा उठाए। तितिक्ष्वा करुणिका, सुहृदम सर्वभूतानाम, सब उसके फ्रेंड हैं, कोई दुश्मन नहीं है। कोई गरीब आके बैठ जाए तो भी हरे कृष्णा, कोई अमीर आके बैठ जाए तो भी हरे कृष्णा। भक्ति सिद्धांत महाराज जो प्रभुपाद के गुरु थे, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा का उत्सव है इसलिए जानना जरूरी है। एक बार एक व्यक्ति था जो मंदिर बनाने के लिए डोनेशन देता था, और भागवतम की क्लास चल रही थी कक्षा में, बीच में बैठ के गप्पे मार रहा था, पता है ये मंदिर की सीढ़ियां मैंने ही बनवाई हैं, यहाँ का मार्बल मैंने ही लगवाया है। भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा शट अप, चुप हो जाओ, खड़े हो जाओ। उन्होंने कहा क्या हो गया जी महाराज, कह रहे बाहर जाओ, अगर तुमने कुछ दान दिया है इसका मतलब ये नहीं तुमने ठाकुर जी या उनकी कथा को खरीद लिया है, बाहर जाओ। लोगों ने कहा अरे ये आगे से दान नहीं देगा, गुस्सा हो जाएगा। उन्होंने कहा ऐसे व्यक्ति को रखने से अच्छा है कि मंदिर की सारी सीढ़ियां मैं उखड़वा दूं, मुझे नहीं चाहिए ऐसा आदमी जो कि भगवान की कथा के अंदर जिसकी रुचि नहीं है, भगवान में जिसका प्रेम नहीं है, ऐसे आदमी को रख के क्या फायदा। तो इस तरह से भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते थे। तो सुहृदम सर्वभूतानाम, जो सबका फ्रेंड है, अब ऐसे आदमी को भी बैठने देते हैं, फिर बाद में भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा उसको प्रसाद खिलाओ और उसकी चेतना को बदलो और उसे भक्ति में जोड़ो, तो भी डांटने के बाद ये नहीं भगा दो उसको, उसको बुलाया वापस और प्रसाद खिलवाया उसको। तो ये सुहृदम सर्वभूतानाम। अजात शत्रा, कोई शत्रु नहीं होता। अभी ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर में एक गोल्डन बाबा आए थे, आप भी जानते होंगे उनको, गूगल पे सर्च करेंगे तो एक बाबा हैं गोल्डन बाबा। गोल्डन बाबा के साथ में सिक्योरिटी वाले 10 थे, तो मैंने उनके सिक्योरिटी वाले से पूछा, मुझे पता नहीं था कौन से बाबा जी हैं, भगवान का दर्शन करने आए हैं। कह रहे ये गोल्डन बाबा हैं। मैंने गोल्डन बाबा कैसे नाम पड़ा, इनके अंदर गोल्ड भरा हुआ है। कह रहे नहीं ये शरीर पे गोल्ड पहनते हैं, तो उनकी अंगूठियां थी 20-30, गले में बहुत सारा सोना था, अभी भी यहीं रहते हैं, दिल्ली में मिल जाएंगे आपको घूमते हुए, उनकी गाड़ी देखेंगे तो आपको लगेगा टेररिस्ट का गैंग जा रहा है। हाँ तो वो बाबा हैं और भक्ति भी देते हैं, दीक्षा भी देते हैं, ज्ञान भी देते हैं लोगों को। तो मैंने पूछा कि इतनी सिक्योरिटी क्यों है। कह रहे बाबा को कोई भी मर्डर कर सकता है, इनके बहुत दुश्मन है। तो मैंने कहा अगर दुश्मन है तो फिर ये बाबा नहीं है, क्योंकि बाबा का क्या है, अजात शत्रुआ, जिसका कोई शत्रु नहीं है। हमारे गुरु महाराज इस्कॉन से, जब रशिया से इंडिया आते हैं तो महाराज को रिसीव करने कोई नहीं आता, महाराज अकेले दो भक्तों के साथ में दिल्ली मंदिर पहुंच जाते हैं, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है महाराज के पास में, उसका कोई शत्रु ही नहीं है, और अगर कोई मार भी देगा तो हम समझेंगे ये तो प्रारब्ध था, आज मेरे दिन था, जब भगवान धब जानेगा चले। लेकिन जो अपनी सिक्योरिटी कर रहा है, जिसको भगवान पे भरोसा नहीं है और ये सोच रहा है मेरा कोई दुश्मन है, तो वो अजात शत्रुआ नहीं है। और लोग ऐसे गुरुजी बनाते, पता है गुरुजी के पास जेट सिक्योरिटी है, ऐसे बहुत बाबा जिनके पास जेट सिक्योरिटी आजकल, तो वो अजात शत्रुआ नहीं है, तो वो कैसे बाबा जी हुआ? क्योंकि शास्त्र कह रहा है अजात शत्रु, उसका कोई शत्रु नहीं है। शांता सदा कैसे रहेगा? शांता। ऐसा नहीं होगा कि बाबा पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेगा और फिर सीट ना मिलने पर अपने वस्त्र बदलकर भाग जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो इस तरह से कोई व्यक्ति अगर कर रहा है तो वो शांत नहीं है, क्योंकि उसको पोजीशन चाहिए, और पोजीशन ना मिलने पर वो कैसा हो जाएगा? दुखी हो जाएगा। लेकिन जो सच्चा संत होगा वो पोजीशन से अटैच नहीं होता है, शांता। और साधवा, साधवा का मतलब जो शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को चला रहा है। शास्त्र कहते हैं भगवान का नाम ही एकमात्र कलयुग में तारने वाला है। हरेरे नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्ते नास्तेव गतिर अन्यथाम, इसके अलावा और कुछ नहीं है हरि नाम के अलावा। तो वो हरि नाम के अंदर प्रगाढ़ता से जुड़ता है। ओके अच्छा, प्रभु जी कह रहे हैं समय हो गया है, तो अभी तो बहुत कुछ बताना था हमें, समय पता नहीं चलता यहाँ कैसे कट जाता है, तो 2 मिनट लूंगा आपके। और हम आज गुरु पूर्णिमा जो बना रहे हैं, लोगों को पता होना चाहिए गुरु पूर्णिमा व्यास देव जो है वेद व्यास, जिन्होंने 108 उपनिषद, महाभारत और शास्त्र में 18 पुराणों की रचना करी, श्रीमद् भागवतम महाभारत ऐसे पुराणों की रचना तो नहीं कह सकते हैं, जिन्होंने लिपिबद्ध किया, क्योंकि रचना वाले तो भगवान ही है, सारे शास्त्रों के रचयिता भगवान है, लेकिन उन्होंने लिपिबद्ध किया तो उनको स्मरता कहा जा सकता है, स्मरण करके उन्होंने लिपिबद्ध किया। जैसे रिसर्चर्स होते हैं ना, वो ऑलरेडी जो नॉलेज अवेलेबल होती है उसको पेपर पे लिख देते हैं और फिर अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा लेते हैं। रिसर्च, सर्च नहीं करते हैं, रिसर्च जो ऑलरेडी है उसको ढूंढ लेते हैं। जैसे न्यूटन पेड़ के नीचे लेटे थे, सेब गिरा तो उन्होंने ढूंढ लिया कि कोई चीज है जिससे सेब ऊपर से गिर के नीचे आता है। लोग बोलते हैं न्यूटन साइंस आगे है, भगवान कुछ नहीं है, अरे तो उसने तो खाली ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्व आकर्षण को ढूंढा, जिसने बनाया वो कितना बड़ा होगा। तो सोचने वाली बात है, लोग सोचते नहीं हो कि सोच ही नहीं है, सोचने के लिए सोचना चाहिए ना पहले, सोच ही नहीं है। तो इस तरह से व्यास देव की जो गद्दी है उसे कहा जाता है व्यास, और वो ही गुरु हैं, क्योंकि उन्होंने कलयुग में ज्ञान को वेदों के रूप में, पुराणों के रूप में प्रकट किया। तो जब कोई भी व्यक्ति इस आसन पर बैठकर उन्हीं के ग्रंथों से प्रवचन करता है तो हम बोल देते हैं ये व्यास आसन पर जो बैठे हैं। व्यास आसन का मतलब जो व्यास देव का आसन है, तो व्यास देव के आसन होने के कारण इसको व्यास आसन कहते हैं। और इस व्यास आसन पर बैठने वाला व्यक्ति जो है वो कौन बन जाता है? व्यास देव का प्रतिनिधि बन जाता है, और वो परंपरा में अगर आ रहा हो तो वह गुरु बनने भी योग्य होता है। तो इसलिए इसको गुरु पूर्णिमा नाम दिया गया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि गुरु जी की पूर्णिमा, ये है व्यास देव की पूर्णिमा, जिस दिन व्यास देव का जन्म होता है। तो व्यास देव जैसा स्मरता, जिन्होंने सारे शास्त्रों का स्मरण किया, भगवान के साथ प्राप्त किया, उन्होंने कहीं पढ़ा नहीं था, उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया नारद मुनि से और फिर सब कुछ याद करके उसको लिखा शास्त्रों को, तो इससे बड़े स्मरता और कौन होंगे, है ना। तो इसलिए व्यास देव को धन्यवाद कहना चाहिए। और इसी